नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। आज कद्दावर नेता नारायण तिवारी की कहानी सुनिए। कद्दावर नेता की छवि वाले नारायण दत्त तिवारी अकेले हैं जिनके नाम दो राज्यों के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी का निधन हुआ तो कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर पेज पर लिखा गया कि ये एक युग का अंत है। ये भारतीय राजनीति के लिए तो सही ही है, कांग्रेस के लिए भी सही है कि नारायण दत्त तिवारी का अंत एक युग का अंत है। तिवारी कांग्रेस के उस दौर के नेता रहे हैं जब कांग्रेस जमीन पर बहुत मजबूत हुआ करती थी। तब कांग्रेस पार्टी में क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे नेताओं की फौज थी जो न सिर्फ बेहद लोकप्रिय होते थे बल्कि जिनका जनता से सीधा संपर्क होता था। आज ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का अवसान इसी वजह से है कि कांग्रेस के पास जमीनी और लोकप्रिय नेता नहीं है। नारायण दत्त तिवारी को नई पीढ़ी रोहित शेखर और उनके बीच चली लंबी लड़ाई के लिए जानती है जिसमें अंततः तिवारी की ही हार हुई और उन्होंने शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा से शादी की और रोहित शेखर को अपना बेटा माना। इसके बाद चुनाव के ठीक पहले अपने सियासी सिद्धांतों में फेरबदल करते हुए जीवन भर के कांग्रेसी तिवारी बेटे रोहित शेखर के साथ भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि उम्र के आखिरी पड़ाव पर इस फेरबदल का कोई अर्थ नहीं रहा। ये पाला बदल उनकी शादी और रोहित शेखर का पिता बनने जैसे ही मजाक बनकर रह गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले नेता नारायण दत्त तिवारी के निधन के बाद उनके व्यक्तित्व और कार्यकाल को याद करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया, तिवारी जी समाजवादी थे, अभी इलाहाबाद काफी चर्चा में है। तिवारी वहां से पढ़े हुए थे। भारतीय राजनीति में इलाहाबाद से तमाम बड़े लोगों का रिश्ता रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर जो बड़े नेता निकले, एनडी तिवारी उनमें से एक थे। तिवारी की याददाश्त बेहद फोटोग्राफिक थी, उन्हें तमाम आंकड़े जुबानी याद रहते थे। गीता, रामायण, वेद, कुरान तमाम ग्रंथों के संदर्भ और श्लोक जुबानी याद रहते थे। तमाम प्रसंग और घटनाएं उन्हें विस्तार से याद रहते थे। उन्होंने बताया, उस समय ये बात खूब चर्चा में होती थी कि बजट आदि के समय या सामान्य तौर पर अफसर अपनी फाइल उनके सामने ले जाते हुए डरते थे क्योंकि वो गड़बड़ियां पकड़ लेते थे। अर्थशास्त्र और राजनीति की उनकी बहुत शानदार समझ थी। उनकी पूरी ट्रेनिंग सोशलिस्ट थी। उत्तराखंड के ब्राह्मण थे तो संस्कृत भी आती थी और शास्त्रीय ज्ञान भी अच्छा था। अकादमिक रूप से वो बहुत प्रतिभाशाली थे। योजना के स्तर पर भी उनके पास दृष्टि थी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने काफी कुछ किया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काफी अच्छा काम किया। मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री हेरोल्ड जोसेफ लास्की के सिद्धांतों से प्रभावित तिवारी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय तक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में रहे और उन्हें नेहरू इंदिरा दोनों का विश्वास हासिल था। उन्होंने लास्की के सिद्धांतों और नेहरू के समाजवाद में समन्वय बनाने की कोशिश की। आज की राजनीति में जिस विकास की जोर शोर से चर्चा होती है, नारायण दत्त तिवारी वो बहुत पहले करके दिखा चुके थे। तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। भारतीय राजनीति में ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है जो शायद ही कभी टूटे। जिस दिन उनका जन्मदिन पड़ता है उसी दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। नारायण दत्त तिवारी आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में 1952 में हुए पहले ही चुनाव में नैनीताल से प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे। 1957 में वो नैनीताल सीट से चुनाव जीते और विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 1963 में तिवारी ने कांग्रेस ज्वाइन की और 1965 में काशीपुर से चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। वो चौधरी चरण सिंह सरकार में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। नेहरू और इंदिरा के करीबी, नेहरू के करीबी रहे तिवारी ने 1968 में जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की जो एक स्वयंसेवी संगठन था। वो इंडियन यूथ के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने। इसके बाद वो तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जनवरी 1976 से अप्रैल 1977, अगस्त 1984 से सितंबर 1985 और जून 1988 से दिसंबर 1988 तक। इसके बाद जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो वो एक बार इस राज्य के भी मुख्यमंत्री रहे। वो अभी तक उत्तराखंड के इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल का पद भी संभाला। वो केंद्र में राजीव गांधी कैबिनेट में वित्त व विदेश मंत्री भी रहे। वो 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1985 से 1988 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राव ने तिवारी को खत्म कर दिया। राजनीति में दाव पेच और उठापटक पार्टी के भीतर भी चलते हैं। नारायण दत्त तिवारी भी इससे अछूते नहीं थे। उनकी प्रधानमंत्री पद की मजबूत दावेदारी को नरसिम्हा राव ने मात दे दी। वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी कहते हैं, उन्होंने कांग्रेस से एक बार विद्रोह भी किया जिससे पार्टी में तमाम दमखम पैदा हुआ, लेकिन उनमें जन नेता की छवि वैसी नहीं रही जो थोड़ा बहुत वो उभर रहे थे। उसे नरसिम्हा राव ने खत्म कर दिया। नरसिम्हा राव ने जगन्नाथ मिश्र और एनडी तिवारी की राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस तरह से कांग्रेस पार्टी खुद डैमेज हुई। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में राव ने तिवारी को खत्म करके एक अहम भूमिका निभाई। जब राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा तो प्रधानमंत्री पद के लिए नरसिम्हा राव और एनडी तिवारी के नामों की चर्चा हुई। हालांकि राजीव नहीं हटे। जब राजीव गांधी की हत्या हुई उस समय कांग्रेस में दो बड़े नेता थे, नारायण दत्त तिवारी और नरसिम्हा राव। तिवारी की जगह राव कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे, लेकिन स्थिति ये थी कि अगर कांग्रेस को चुनावों में जीत हासिल होती है तो एनडी तिवारी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन तिवारी महज 800 वोटों से लोकसभा का चुनाव हार गए और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। आगे की कहानी के लिए दोपहर 2 बजे सुने कद्दावर नेता नारायण दत्त तिवारी की कहानी।